हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HMH की बात रोहित में पढ़ा के साथ पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे बाउंस रेट क्या है, इससे क्या होता है और इससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, और कहां से हम बाउंस रेट को देख सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बाउंस रेट को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, वो सब हम अभी बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपका जो ब्लॉग है उसकी कोई भी पोस्ट अगर फर्स्ट पेज पर आ जाए, फर्स्ट नंबर पर आ जाए, तो फिर उसकी कभी रैंक डाउन ना हो, तो उसके लिए बाउंस रेट का कम होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस पॉडकास्ट को आप पूरा लास्ट तक सुने, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या आपको करना है ताकि आपका बाउंस रेट कम से कम रहे और आपकी पोस्ट अगर कोई सी रैंक हो गई है तो वो टॉप पर ही रहे, और कोई सी पोस्ट अगर नीचे डाउन भी है तो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट ऊपर आ जाएगी अगर आपका बाउंस रेट कम है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, तो आप लास्ट तक पूरा सुनते रहिए। सबसे पहले जानते हैं हम बाउंस रेट होता क्या है। कोई भी विजिटर जब हमारी वेबसाइट पर आता है कुछ सर्च करके गूगल पे, और वो अगर वापस गूगल पर चल जाता है, मतलब बैक की बटन दबा देता है और फिर किसी दूसरी वेबसाइट पर जाता है, तो वो होता है बाउंस। गूगल का लगता है कि ये वेबसाइट पर गया और इसने वापस से इसने देखा नहीं, जो मैंने सर्च किया था वो इस वेबसाइट पर नहीं है, और वो कट करके वापस चला गया। अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि वो क्यों उसने कट किया, लेकिन सबसे मेन यहाँ पर यही है, गूगल उससे इस चीज को समझता है कि उसने जो सर्च किया था उसके बाद हमने इस रिजल्ट को दिखाया, इस वेबसाइट को दिखाया, वो इस वेबसाइट पर गया लेकिन कट करके वापस आया, तो गूगल को ये सिग्नल गया कि जो इसको चाहिए था वो इस वेबसाइट पर नहीं मिला, तो फिर वो दूसरी वेबसाइट पर गया, और अगर वहां पर वो ज्यादा देर तक रुका तो फिर गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट पर वो है जो सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट थी, ये ज्यादा देर तक रुका, तो फिर ऑटोमेटिकली अगली बार कोई अगर उस चीज को सर्च करता है तो गूगल जो सेकंड नंबर वाली वेबसाइट थी उसको फर्स्ट पे दिखाता है। तो इस तरीके से गूगल जो है रैंकिंग में बाउंस रेट को बहुत ज्यादा नापता है। अगर 2020 में अगर हम सबसे बड़ा रैंकिंग सिग्नल अगर माने तो वो बाउंस रेट ही है इसके लिए, लेकिन ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकता कि हम इसमें डायरेक्ट कुछ कर दें कि हम विजिटर को पकड़ के रखें, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, और सबसे मेन इसमें हमें ये है कि जो यूजर को चाहिए वही हमें अच्छे तरीके से उसमें देना होगा जब भी यूजर हमारी वेबसाइट पर रुकेगा, और उसके लिए क्या क्या करना है वो सब भी मैं अभी आपको पॉइंट पूरे बताऊंगा। सबसे मेन अब बात आती है कि हम बाउंस रेट देखेगा, तो इसके लिए सिंपल आपको गूगल एनालिटिक्स में जाना होगा। आपने अपने ब्लॉग को अगर गूगल एनालिटिक्स में एड करके रखा है तो वहां पर आप पूरे अपने विजिटर को तो ट्रैक करते ही होंगे, वहीं पर एक ऑप्शन मिलता है हमें बाउंस रेट का, वहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपका वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कितना है, वो परसेंट में दिखाता है, वो हो सकता है 80% हो, 70% हो, 20% हो, 30% हो, वो कितना भी हो सकता है। यहाँ पर बात आती है लेकिन कि कितना होना चाहिए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा पेज है तो ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो 30% है, तो मतलब 100 लोग आए उसमें से 70 लोग जो है वो आपकी वेबसाइट पर ही रुके, खाली 30 लोग वापस गए, तो इसलिए जो 30% है वो बाउंस रेट हो गया हमारा। तो इस तरीके से नापा जाता है, इसमें मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है खाली 100 विजिटर को ही नाप रहे हैं, वो जितने टोटल जो ओवरऑल होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बाउंस रेट है वो नापा जाता है। उसमें फिर बहुत सी चीजों को, कितने सेकंड रुका या फिर उसने क्या क्या किया, एक विजिटर आया उसने कितने पेज ओपन किए, ये सब भी बाउंस रेट में गूगल उसको ट्रैक करता है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि आपको बाउंस रेट का देखना है, आप सिंपल गूगल एनालिटिक्स में जाके देख सकते हैं। और आपको ये भी अब क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा बाउंस रेट अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी रैंक डाउन हो जाएगी, अगर टॉप पे आ भी गए हैं तो भी, और अगर नीचे डाउन भी है तो भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे हमारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या पॉइंट है हमें जो इनका ध्यान रखना है अगर हमें अपना बाउंस रेट कम से कम रखना है। सबसे मेन तो इसमें अगर सिंपल मैं आपसे कहूं तो वो यही है कि जो यूजर को चाहिए आपको वही बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल वे में पूरे डिटेल में आपको वो देना होगा जो यूजर को चाहिए। तो इसके लिए आपको यूजर का इंटेंशन समझना होगा कि वो गूगल में जो कुछ भी सर्च कर रहा है उसके पीछे उसका क्या माइंड सेट है, वो क्या जानना चाह रहा है। आप जब भी पोस्ट लिखे तो आप अपने आप को एक विजिटर की तरह समझे और फिर उसको एक बार रीड करे कि जो मुझे चाहिए था वो सही तरीके से मिला कि नहीं, क्योंकि अगर आप बस अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो सकता है कि जो यूजर को चाहिए उस तरीके से आप पूरा डिटेल में ना लिख, तो जितना ज्यादा डिटेल में आप लिखोगे पोस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो आप इन पॉइंट का ध्यान रखें, सबसे पहला तो आपकी वेबसाइट का जो डिजाइन है वो अच्छा हो। अगर वेबसाइट का डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी विजिटर आएगा तो ऑटोमेटिक उसको अगर अच्छा नहीं लगा तो वो कट करके वापस जा सकता है, भले हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो। फिर भी इसका एग्जांपल आप खुद को देख सकते हो, कोई किसी भी वेबसाइट आप ओपन करते हो अगर उसका डिजाइन अच्छा नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता क्या खुल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप कट देते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट का डिजाइन अच्छा हो। सेकंड, वही जो मैंने आपको बताया कि बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए, इसमें आपको SEO फ्रेंडली पूरा कंटेंट लिखना है, उसी के साथ आपको यूजर का भी पूरा ध्यान रखना है कि यूजर को क्या क्या चाहिए, उसको जो भी मेन मेन चीज चाहिए वो आप अपने पोस्ट में हाईलाइट भी कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा अगर स्क्रोल करे तो उसको नजर वहां पर पड़े तो वो समझ जाए कि हाँ जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। थर्ड है मल्टीमीडिया का यूज करें, जैसे इमेज का यूज करें, वीडियो लगाएं अपने पोस्ट में, और आप पॉडकास्ट भी इम्बेड कर सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, मान लीजिए आपने वीडियो अपने पोस्ट में लगाया है, तो जो भी विजिटर आया वो अगर वहां पर आपकी पोस्ट पर आने के बाद अगर वीडियो देखने लग गया मान लीजिए, और वो 10 मिनट का वीडियो है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाउंस रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि गूगल को लगेगा इसकी पोस्ट इसको बहुत ज्यादा पसंद आई जब ये पोस्ट पर 10 मिनट तक रुका। तो इस तरह आप इन चीजों का यूज करके अपनी वेबसाइट पर विजिटर को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक सकते हो। हमें अगर बाउंस रेट कम करना है तो हमें मेन हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हम कोई भी विजिटर आए उसको ज्यादा से ज्यादा देर तक हमारी वेबसाइट पर रोकें, उसको मजबूर करें कि हमारी पोस्ट को पूरा रीड करें। अब फोर्थ आता है लोडिंग टाइम। अगर आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो भी वेबसाइट हो सकता है कि खुलने से पहले ही जो विजिटर है वो कट कर दे, क्योंकि अगर उसका स्लो कनेक्शन हुआ या फिर उसको बहुत देर लगा लोड होने में, तो सिंपल है वो बैक बता देगा कि यार पता नहीं क्या है, खुल नहीं रही है या फिर जो भी है, तो फिर वो बैक करके हो सकता है दूसरी वेबसाइट पर चला जाए। हमें कुछ भी करके विजिटर को बैक बटन को दबाना नहीं देना है, तो उसके लिए सबसे मेन ये भी है कि हमारी वेबसाइट का स्पीड फास्ट हो। गूगल ने ये ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि जो वेबसाइट की स्पीड है वो एक रैंकिंग फैक्टर है, मतलब जो फास्ट वेबसाइट होती है गूगल उसको ऊपर दिखाता है रैंकिंग में, तो इसलिए आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड कम रखनी है। उसके लिए आपको जो भी करना है वो आप पूरे तरीके से कीजिए। इसके बारे में मैंने ब्लॉग पोस्ट में शेयर किया है कि आप क्या क्या करें जिससे ब्लॉग की जो स्पीड है वो फास्ट रहे, तो आप वो जाकर रीड कर सकते हैं, उससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ है इंटरनल लिंक ऐड करें अपने पोस्ट में। मान लीजिए कोई विजिटर आया और उसने पूरी पोस्ट आपकी रीड करी, उसको बहुत अच्छी भी लगी, लेकिन उसके बाद वो कट करके चला जाएगा, तो अब वहां पर और उसको आगे रोकने के लिए कि अगर वो और कुछ रीड करना चाहे तो वो कहां से जाए, तो आप अपनी पोस्ट में इंटरनल लिंक ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने जो पोस्ट में जो बताया उससे संबंधित अगर कोई दूसरी पोस्ट भी है तो आप वहां पर अपने पोस्ट लिंक ऐड कर सकते हैं उन कीवर्ड्स पर उन पैराग्राफ में। तो इससे क्या होगा, अगर उस बारे में अगर उसको और डिटेल में जानना होगा तो वहां से उस पेज पे जाएगा, फिर वहां वो और रीड करेगा, तो इससे गूगल को बहुत ही अच्छा सिग्नल जाता है हमारी वेबसाइट के लिए कि ये वेबसाइट पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, इसलिए विजिटर एक पेज के लिए गया लेकिन वो दो तीन पेज पढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर ये है तो हमारा बाउंस रेट ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, और इससे हमारी रैंकिंग जो है वो एक तरीके से बूस्ट हो जाएगी गूगल में कि नहीं इस वेबसाइट पर कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए कोई भी जा रहा है तो वो एक से ज्यादा पेज रीड कर रहा है। सिक्स्थ है जो भी विजिट्स आप साइट में यूज करते हो को भी थोड़ा सही तरीके से यूज करें, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप जो यूज कर रहे हो उसको कोई मतलब ही ना हो। आप ऐसे विजिट्स यूज करें जैसे आप कोई जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ भी इस टाइप से जिससे यूजर इंगेज करे। तो ये आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सी चीजें हैं जो यूजर काम की रही है, ऐसा नहीं है कि जो काम के नहीं हो वो भी आप ऐड कर रखें, उससे आपकी लोडिंग टाइम भी बढ़ेगी और यूजर को भी परेशानी होगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सेवंथ है जो भी कीवर्ड आप चुन रहे हो अपनी पोस्ट के लिए उसको भी ध्यान से सुनो। मतलब अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हो तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा आप सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद जो भी कीवर्ड आप चुनो उसके पीछे का इंटेंशन समझो यूजर का, कि ये अगर कोई गूगल में डाल रहा है तो उसके पीछे उसका क्या माइंड सेट है, वो क्या जानना चाह रहा है, उस तरीके से फिर अपनी पोस्ट को लिखो सही कीवर्ड को चुनने के बाद। एक थे यूजर फ्रेंडली, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब पढ़ने में आसान और देखने में सुनने में पूरा सही तरीके से बिल्कुल अच्छा भी दिखे। तो इसके लिए आपको अपनी पोस्ट में छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है, सही इमेज, सही हेडिंग, सब हेडिंग, सारी चीजों का बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है। जो भी फॉर्मेटिंग है वो पूरा सही तरीके से आपको करना है, तो इसके बारे में आपको अगर अभी नहीं पता कि किस टाइप से सही फॉर्मेटिंग में हम पोस्ट लिखते हैं तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, मैंने अपनी वेबसाइट पर भी बताया है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। 9th है मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको यह तो पता ही होगा इंटरनेट पर ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही सर्च करते हैं, तो ऐसे में आप खुद अगर देखना चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर कितने लोग मोबाइल से आते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स में जाकर देख सकते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर 80-90% लोग तो मोबाइल से ही आपकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट मोबाइल में ठीक तरीके से चलेगी ही नहीं तो फिर कोई क्यों आपकी वेबसाइट पर आना पसंद करेगा। तो इसके लिए मोबाइल फ्रेंडली होना वेबसाइट का बहुत जरूरी है, और गूगल ने ऑफिशियली बताया है कि अगर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, मोबाइल में अच्छे से ओपन होती है, तो उसको वो मोबाइल पर अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहां पर उसको ज्यादा ऊपर दिखाते हैं, और अगर कोई मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उसको मोबाइल में अगर कोई सर्च कर रहा है तो वहां पर उसको नीचे दिखाते हैं। समझ लीजिए अगर आपकी वेबसाइट अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप 80% ट्रैफिक तो वैसे ही खो देंगे, तो इसलिए आपको मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट को रखना है। 10th है ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का आर्टिकल लिखें, मतलब ज्यादा लंबा आर्टिकल लिखें। यहाँ पर बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि लंबे आर्टिकल से कुछ नहीं होता, मैंने जो यूजर को चाहिए वो हम बताओ बस, ये बिल्कुल सच बात है कि यहाँ पर हम कुछ भी अगर स्टोरी लिखेंगे, कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लंबे से लंबा यहाँ पर लिखने से मतलब ये है कि आपको डिटेल में पूरा लिखना है, जो भी टॉपिक है उसको आपको पूरा कवर करना है, कि यूजर अगर कोई आ गया तो ऐसा ना हो कि उसको लगे कि यार इसमें ये पॉइंट और छूट गया, ये और होना था, मैं दूसरी वेबसाइट पर जाता हूँ वो उसको अब वहाँ पर देखता हूँ, पूरा आपको उस टॉपिक को A to Z पूरा कंप्लीट करना है डिटेल में। तो इसमें सीधी सी बात है, आपका जो आर्टिकल है वो लंबा होना ही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना लंबा आर्टिकल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा डिटेल में होगा। 11th है पोस्ट का सही टाइटल यूज करें। हम पोस्ट की जो भी हेडिंग दे रहे अगर वो सही नहीं होगी तो विजिटर हमारी वेबसाइट पर आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो उसके बाद मान लीजिए पोस्ट में कुछ और रहा, टाइटल कुछ और रहा, तो वो कट करके चले जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको सही तरीके से अपनी हेडिंग देनी है, और हेडिंग को इस तरीके से ही देना है कि जो पोस्ट है वो उसी के बारे में हो, मतलब हेडिंग को रीड करके ही सामने वाला समझ जाए कि वो पोस्ट में उसको क्या मिलने वाला है। 12th है सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसी में क्लियर कर दे कि आपकी पूरी पोस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी आपकी वेबसाइट पर आया उसने जैसे ही रीड करना स्टार्ट किया उसको सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो अभी यहाँ पर उसको क्या क्या मिलने वाला है, या फिर वो जो जानने चाह रहा है उसको वो यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। तो वो हम सबसे पहले पैराग्राफ में हमें उसको क्लियर करना है। तो हमारा जो भी मेन टॉपिक है हम वो पहले पैराग्राफ में बता देंगे कि ऐसा है वैसा है, हम आपको ये बताएंगे वो बताएंगे इस टाइप से। जैसे आप अगर इस पॉडकास्ट को भी स्टार्टिंग से अभी तक सुन रहे हो तो स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं इस पॉडकास्ट में आपको क्या क्या बताऊंगा, तो ये सब चीजें आपको जाननी थी इसलिए आप अभी तक पॉडकास्ट सुन रहे हो। तो इसी तरह हर जगह YouTube वीडियो में भी हो, पॉडकास्ट में हो, या फिर ब्लॉग आर्टिकल में हो, हमें स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर करना है कि हम उसमें क्या बता रहे हैं, ताकि यूजर को समझ में आ जाए अभी यहाँ पर जो टाइम देगा तो उसको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 13 है ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग पे जो कमेंट आ रहे हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप स्पैम कमेंट है उनको ही अप्रूव कर दें, क्योंकि उससे भी विजिटर है उन पे गलत इफेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत से ऐसे यूजर देखे हैं जो ब्लॉग पोस्ट पढ़ने से पहले सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं और कमेंट पढ़ते हैं। वो कमेंट से उनको अंदाजा लग जाता है कि दूसरे लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, उसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो पोस्ट को रीड करें कि नहीं करें। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कोई भी कमेंट अगर आप अप्रूव कर रहे हो तो वो बढ़िया हो, ऐसा ना हो कि आप स्पैम कमेंट अप्रूव करें, नहीं तो उससे आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन कहीं ना कहीं खराब होगी। 14 है जो कैटेगरी आप यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट में वो ज्यादा ना रखें, इतनी रखें जो आपकी लिमिट की हो। अगर ऐसा हुआ आपने बहुत सारी कैटेगरी बना दी लेकिन उनमें सिर्फ एक एक पोस्ट ही है, तो सिंपल सी बात है आपका बाउंस रेट बढ़ना ही है, क्योंकि कहीं का मान लीजिए कोई पोस्ट पे आया और उसने आपकी पूरी पोस्ट रीड भी कर ली, उसके बाद वो दूसरी पोस्ट भी रीड करना चाहता है लेकिन आप उस कैटेगरी में सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो मजबूरन उसको वहां से वेबसाइट को कट करके जाना होगा, तो बाउंस रेट मजबूरन आपका बढ़ गया। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, आप कम कैटेगरी रखें लेकिन उनमें ज्यादा से ज्यादा पोस्ट होनी चाहिए। आपको ऐसी कैटेगरी नहीं रखना है जिसमें आप पोस्ट ही पब्लिश ना करें, कम से कम रहेगी तो ज्यादा सही है। 15 है पेज ज्यादा हो। अगर हमारी वेबसाइट पर पेज कम होंगे तो सिंपल सी बात है यूजर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे कि वो और दूसरी पोस्ट रीड करे या फिर उसको और जो जानना है उसके रिलेटेड कुछ मिले, लेकिन हमारी वेबसाइट पर अगर ज्यादा कंटेंट होगा तो ज्यादा चांसेस है कि उसको कुछ और भी बढ़िया पोस्ट दिख जाए, रिलेटेड पोस्ट दिख जाए, तो वो वहां पर उसको रीड करने लगे। 16 है वेबसाइट में सर्च बॉक्स का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर गए और वहां पर आपने कोई पोस्ट रीड करी लेकिन आप कोई दूसरी आर्टिकल भी रीड करना चाहते हो तो उसको आप सर्च कहाँ करोगे, उसके लिए वहां पर सर्च बॉक्स अगर होगा तो आप वहां पर सर्च करके देखोगे कि यहाँ पर भी वो जानकारी है क्या, अगर वो होगी तो आप वहां जाके फिर उसको भी रीड करोगे, तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर सर्च बॉक्स ही नहीं होगा तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम उस वेबसाइट पर कुछ और भी सर्च करके रीड करें जो हमें जानना है, तो इसलिए सर्च बॉक्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब तरीकों से हम अपने जो वेबसाइट का बाउंस रेट है वो कम कर सकते हैं। और पोस्ट के आखिरी में हम यूजर से ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उनसे ये कह भी सकते हैं कि उनको ये जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताए, ताकि हमें भी पता चले जो भी उनको लगा, या फिर कोई उनका सवाल हो तो वो पूछे। तो इससे क्या होगा कि वो हमारी वेबसाइट पे अगर इंगेज करेंगे तो वहां से भी गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि इनको ये पोस्ट अच्छी लगी है जब भी यहां पर ये कमेंट कर रहे हैं या फिर जब भी ये इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके ये सारे सिग्नल जब मिलके पूरा एक साथ जब गूगल पास जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग गूगल समझता है कि इसका जो बाउंस रेट है हम इसको कितना रखें, इस वेबसाइट पर जो विजिटर आ रहे हैं वो कितनी देर रुक रहे हैं या फिर कितनी जल्दी जा रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल वो समझ के इसको बाउंस रेट में वो कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी पोस्ट को और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी पोस्ट को रैंकिंग मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट टॉप पर रहे, वो टॉप पर आ गई है तो वो टॉप से फिर नीचे ना आए, तो उसके लिए आपको बाउंस रेट कम से कम बनाए रखना हो। तो आप समझ चुके हैं कैसे आपको बाउंस रेट कम करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है बाउंस रेट से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी मैंने आपसे शेयर की है उसके बारे में मैंने हिंदी में help.com पूरा डिटेल में मैंने आर्टिकल भी शेयर किया है, तो आप वहां जाके रीड भी कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट या फिर सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, जब तक के लिए गुड बाय।